ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर् उत्तम श्लोके भक्तिर् भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
हरे कृष्ण। आज हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय क्रमांक 1 का अंतिम श्लोक, उसके उपरांत अध्याय क्रमांक 2 का दूसरा, तीसरा और यहां पर लिखा गया है चौथा श्लोक। तो हम इसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है, फिर भी हम बोलने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमें वैसा आदेश मिला है। कुछ गलती हो गई तो हमें माफ कीजिए। हरे कृष्ण। तो प्रसंग ऐसा है, सुखदेव गोस्वामी पाद महाराज परीक्षित को मन्वंतर के बारे में, मनु के कार्यकलापों के बारे में वर्णन कर रहे हैं और उसमें वे वर्णन करते हैं कि चौथा मनु जो है उनका नाम था तामस और उनके कार्यकाल में भगवान श्री हरि प्रकट हुए और उन्होंने गजेंद्र को घड़ियाल से, मगरमच्छ के चंगुल से बचाया। तत्क्षण महाराज परीक्षित गजेंद्र मोक्ष लीला श्रवण करने के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं और वह प्रश्न करते हैं कि इस लीला का सविस्तर वर्णन करें। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद ये गजेंद्र मोक्ष लीला यह आने वाले 2-3 अध्याय में वर्णन करते हैं। ये बहुत ही सुंदर लीला है। तो पहले हम श्लोक का पठन करेंगे, फिर उसके उपरांत उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अध्याय 1 ये अंतिम श्लोक है। श्री सूत उवाच परीक्षितैव सुतो बादरायणी प्रायोपविष्टेन कथा सुचोदिता उवाच विप्रा प्रतिनंद्य पार्थिवं मुदा मुनीनां सदसि स्म शृण्वताम्। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, जब आसन्न मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे महाराज परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से ऐसा बोलने के लिए प्रार्थना की तो मुनि ने राजा के शब्दों से प्रोत्साहित होकर राजा का अभिनंदन किया और वे सुनने के इच्छुक मुनियों की सभा में अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक बोले। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मांड के प्रशासक मनु नामक प्रथम अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अध्याय दो श्लोक संख्या एक, गजेंद्र का संकट। श्री शुक उवाच, आसीत गरीवरो राजन त्रिकुट इति विश्रुतः शिरोदेनावृतः श्रीमान योजनायुत योजनायुतम उच्छ्रितः। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, त्रिकुट नाम का एक विशाल पर्वत है। यह 10,000 योजन 80,000 मील ऊंचा है। चारों ओर से क्षीर सागर द्वारा घिरे होने के कारण इसकी स्थिति अत्यंत रमणीक है। दो और तीन, तावता विस्तृतः पर्याक् त्रिभिः श्रृंगै पयोनिधिम् दिशः खं रोचयन्नास्ते रौप्याय स हिरण्मयैः अन्नैश्च ककुभा सर्वा रत्नधातो विचित्रितैः नानाद्रुमलता गुल्मैर् निघोषैर् निर्धराम्भसाम्। पर्वत की लंबाई तथा चौड़ाई समान, मतलब 80,000 मील है। इसकी तीन प्रमुख चोटियां जो लोहे चांदी तथा सोने की बनी हुई है, सारी दिशाओं एवं आकाश को सुंदर बनाती है। पर्वत में अन्य चोटियां भी हैं जो रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण है और सुंदर वृक्षों लताओं एवं झाड़ियों से अलंकृत है। पर्वत के झरनों से जो ध्वनि उत्पन्न हो जाती है वह सुहावनी है। इस प्रकार यह पर्वत सभी दिशाओं में सुंदरता को बढ़ाते हुए खड़ा है। श्लोक संख्या चार, मेरे पीछे दोहराइए, जारी लिखा है ना, स च अविनिज्यमानाङ्घ्री समन्तान् समन्तात् पय उर्मिभिः करोति श्यामलां भूमिं हरित मरकात् अश्मभिः सचावनिज्यमानाङ्घ्री समन्तात् पयूर्मिभिः करोति श्यामलां भूमिं हरिं मरकताश्मभिः सचावनिज्यमानाङ्घ्री समन्तात् पय उर्मिभिः करोति श्यामलां भूमिं हरिं मरकताश्मभिः सचावनिज्यमानाङ्घ्री समन्तात् पय उर्मिभिः करोति श्यामलां भूमिं हरिं मरकताश्मभिः। बोलिए, माताजी शब्दार्थ, सह वह पर्वत, च भी अवनिज्यमानाङ्घ्री जिसका चरण सदा प्रक्षालित होता है, समन्तात् चारों ओर से पय उर्मि भी दूध की लहरों से, करोति बनाता है श्यामलाम गहरा हरा, भूमिम भूमि को हरित हरी, मरकत मरकत मणि, अश्म भी पत्थरों से। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। पर्वत की तलहटी की भूमि सदैव दूध की लहरों से प्रक्षालित होती रहती है, जो आठों दिशाओं में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तथा इनके बीच की दिशाओं में मरकत मनिया उत्पन्न करती हैं। तात्पर्य, हमें श्रीमद् भागवत से पता चलता है कि समुद्र कई प्रकार के हैं, कहीं दूध का सागर, कहीं सुरा का सागर, तो कहीं घृत तेल या मोटे या मीठे जल का सागर है। इस तरह इस ब्रह्मांड में नाना प्रकार के समुद्र है। आधुनिक विज्ञानी अपने सीमित ज्ञान के बल पर इन कथनों की चुनौती नहीं दे सकते, वे हमें किसी भी लोक के विषय में पूरी जानकारी नहीं दे सकते, यहां तक कि जिस लोक में हम रह रहे हैं उसके विषय में भी नहीं। इस लोक से हम समझ सकते हैं कि यदि किन्हीं पर्वतों की घाटियां दुग्ध से प्रक्षालित हो तो उनमें मरकत मनिया उत्पन्न होती हैं। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि भगवान द्वारा संचालित भौतिक प्रकृति के कार्यकलापों की नकल कर ले। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामैहं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
हरे कृष्ण। आप सभी हरिजनों का, भगवत भक्तों का, श्रद्धालुओं का आज के इस प्रातःकालीन भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। वैसे तो भागवत जैसे महान ग्रंथ पर चर्चा करने के लिए हमारी कोई योग्यता नहीं है, फिर भी हम अपने स्वयं के शुद्धिकरण के लिए कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। एक राजा था, उसको एक भयंकर स्वप्न आया था। उसने अपने मंत्री को पूछा, मैं जब सो जाता हूं रात को घने अंधकार में कुछ काला कलूट ऐसा दिखने लगता है, बादल जैसा बहुत ही भयंकर डरावना दिखने लगता है, तो क्या हो सकता है? तो मंत्री महोदय बोल देते हैं, शायद मृत्यु है, आपको यहां से भागना पड़ेगा राजन, यहां से निकल जाओ। तो राजा तुरंत एक बहुत ही अच्छा तगड़ा घोड़ा लेकर के भाग जाते हैं, जोर जोर से भागने लगता है, तड़क तकड़क 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 तकड़क, जोर जोर से भाग के बहुत थकने के बाद एक तालाब के किनारे आता है। स्वाभाविक रूप से उसको प्यास लगी होती है, तालाब में झुक करके पानी पीने के लिए आता है, हाथ में ऐसा पानी लेता है और नीचे तालाब में देखता है तो क्या है, वापस वही डरावनी भयंकर काला कलूटा, ऐसा कुछ चीज था, कोई व्यक्ति था जो उनको डराता था, वो पानी में दिखने लगा और वो हंसने लगा। तो इधर वापस आ गया, मतलब क्यों हंस रहे तुम, आज तक मैं तेरे घर पे आता था, तेरे शयन कक्ष में आता था, लेकिन आज तू खुद मेरे घर पे आ गया, मेरे पास आ गया, इससे बड़ी सुविधा क्या हो सकती है मेरे लिए। तो ये मृत्यु ही है, संकट ही है। तो गजेंद्र मोक्ष लीला जो है उसका फलश्रुति से हम लीला का प्रारंभ करेंगे, ताकि आने वाले दो तीन अध्याय में हम अच्छे तरह से ध्यान देकर श्रवण करें कुछ महीनों तक। उसका फलश्रुति यह है कि जो कोई भी गजेंद्र मोक्ष लीला सुबह उठने के बाद अपने बिस्तर में ही अगर स्मरण करता है तो उसको दो वरदान भगवान ने दिए हैं, हालांकि वो तीन है लेकिन दो दिए हैं। एक तो है कि वो इसी जन्म में भगवत धाम चला जाएगा, दूसरा है कि उसको जो बुरे स्वप्न आते हैं ना, हम में से कितने लोगों को आते रहेंगे, लगभग सभी लोगों को स्वप्न आते हैं, बराबर लगभग सभी लोगों को स्वप्न आते हैं, कुछ अच्छे आते हैं कुछ बुरे आते हैं, अच्छे बुरे कोई चीज है नहीं दुनिया में, सब बुरा ही है, कृष्ण के अलावा जो भी है सब बुरा है। तो इन सब स्वप्नों से कभी कभी आता है ना, कभी अचानक से हमारा कुछ अपघात हुआ हो, दुर्घटना हो, कोई शेर खाने को आया हो या सांप काटने को आया हो, किसी ने गाली दी हो, किसी ने मारा हो, कुछ भी स्वप्न में आता है उठपटांग चीज, कुछ हमारा वास्तविक जीवन से संबंध नहीं है। इससे हमें पूर्ण रूपे न मुक्ति मिलेगी, कोई भी ऐसा बुरा स्वप्न नहीं आएगा। और उसी में दूसरा एक है, आचार्यगण भी बताते हैं, शास्त्र भी बताता है, ये भौतिक दुनिया ही एक स्वप्नवत है। तो अगर हम सुबह उठकर प्रातःकालीन समय में बिस्तर में ही जल्दी उठ करके गजेंद्र मोक्ष लीला का स्मरण करते हैं तो इस भौतिक जगत से हमें विमुक्ति मिल सकती है, मुक्ति नहीं विमुक्ति, वहां पर वर्णन है शास्त्र में भागवत में, मतलब भगवान के धाम हम वापस जा सकते हैं विशिष्ट रूपे न मुक्ति। यह तीन वरदान गजेंद्र मोक्ष लीला का श्रवण करने से प्राप्त होता है। तो इसलिए एक भक्त ने मुझे पूछा था, बहुत बुरे बुरे स्वप्न आते हैं तो क्या करना चाहिए, तो हमने उनको इसको पढ़ने का स्मरण करने का अनुरोध किया था। लेकिन हमारी समस्या यह है, जैसे हम सुबह उठते हैं
अभी लोग तो दुर्बुद्ध हो गए, मंदा सुमंदा मते हो, लेकिन मोबाइल स्मार्ट हो गए, स्मार्टफोन बराबर। जैसे हम सुबह उठ जाते हैं, पुराने समय में भारतीय संस्कृति में वर्णन था कि प्रभाते कर दर्शनम, कराग्रे वसते लक्ष्मीम, कर मध्ये च सरस्वती, बराबर। प्रभाते कर दर्शनम, सुबह उठ के हम अपने हाथ का या गुरु का, महाजनों का, कृष्ण का स्मरण करने की संस्कृति है और शास्त्रों में उसकी संस्तुति भी वैसी है। लेकिन जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं रात को जो भी हमने पोस्ट किया था उसको कितने लोगों ने पढ़ा है, कितने लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर हमें गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोला है, फेसबुक पे कितने लाइक शेयर हो गए हैं। तो ऐसी दुर्दैवी अवस्था के साथ हम सुबह उठ जाते हैं, तो क्यों ना हम ये भौतिक स्वप्नवत जीवन जारी रखें, भगवान जारी रख देते हैं। तो हमें अंदर से लगने लगता है कि कोई ना कोई मेरा मैसेज पढ़ना चाहिए, कोई ना कोई मुझे शेयर करना चाहिए, बहुत ऐसी भौतिक लोगों की इच्छा रहती है। यही हमारा दुर्दैव है। पहले लोग में कुछ भारतीय संस्कृति में कुछ गाना गाते थे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, लेकिन ये अभी गाना उल्टा होने लगा, फोर्जी शक्ति हमें देना डाटा, मोबाइल का सिग्नल कमजोर हो न जाए, भूल कर भी हमें कोई भूल से व्हाट्सएप पे ब्लॉक करने न देना। ये हमारी दुर्दैव अवस्था है, सुबह उठ के सिग्नल है कि नहीं, ये आया कि नहीं, वो आया कि नहीं, लेकिन उसके बावजूद उसको बाजू में रख के अगर हम ये गजेंद्र मोक्ष लीला का स्मरण करते हैं तो हमारा भगवत धाम निश्चित है। ये भगवान ने और सुखदेव गोस्वामी ने दो तीन बार दोहराया है। जय श्री राधा राज बिहारी भगवान की, श्री गौनीताय की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं एक तात्पर्य में, इसी उपाख्यान में, प्रसंग में, कि हमें सुखदेव गोस्वामी का यह आदेश पालन करके सुबह उठने के बाद भगवान की इस लीला को, गजेंद्र की जो मोक्ष लीला है उसको स्मरण करना चाहिए। तो इसका इतिहास ऐसा है, सुखदेव गोस्वामी पाद यहां पर सारे मनुओं का वर्णन कर रहे हैं। चौथे मनु जो है तामस, उनके कार्यकाल का यह प्रसंग है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में वर्णन है भागवत में, दक्षिण भारत के द्रविड़ देश के तमिलनाडु में एक राजा थे, उनका नाम था इंद्रद्युम्न। वो भगवान श्री हरि के बहुत महान भक्त थे, अच्छा राज्यकारभार करते थे, राज्यकार करते थे, और अपना उम्र होने के पश्चात उन्होंने वो जो राजपाट है दूसरे के हवाले कर करके मलय पर्वत के ऊपर भगवान का और ध्यान करने के लिए, भगवान का और भक्ति करने के लिए निकल गए, कुटिया बना ली। उस कुटिया के अंदर राजा इंद्रद्युम्न ध्यान करने लगे। उसी समय उस कुटिया के पास एक महान ऋषि आए जिनका नाम था अगस्त्य। ये बहुत ही शक्तिशाली और महान ऋषि थे, लेकिन समस्या यह हो गई कि राजा इंद्रद्युम्न भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे हैं और उनको इस बात का ज्ञान नहीं था या भान नहीं था कि बाहर यहां पर अगस्त्य ऋषि आए हैं, इसलिए वो उनका स्वागत नहीं कर पाए। ये परिस्थिति बिल्कुल परीक्षित महाराज जैसी है, खाली जो पात्र बदल गए, वहां पे शमिक ऋषि ध्यान कर रहे थे और राजा परीक्षित आए थे, यहां पर राजा इंद्रद्युम्न ध्यान कर रहे हैं और अगस्त्य ऋषि आए हैं, लेकिन दोनों का परिणाम, कारण और परिणाम एक ही है। दोनों भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे थे
और परिणाम ऐसा हुआ कि यहां पर अगस्त ऋषि ने इंद्रद्युम्न महाराज को श्राप दे दिया, जाओ आप भी एक मूढ़ मंद हाथी की तरह रहते हो तो आप हाथी बन जाओ। जो महाराज इंद्रद्युम्न को जब खबर मिली, जब वो जान गए कि मेरे को एक मूढ़ हाथी मंद हाथी बनने का श्राप दिया है, तो उनके पास सारे अवसर थे अगस्त ऋषि को श्राप देने का या उनसे शिकायत करने का। आप देखते नहीं हो, मैं भी जप कर रहा हूं, मैं भी भक्ति कर रहा हूं, मैं ध्यान मग्न कर रहा था, मैं इधर उधर देख देख के नहीं करता था, मैं अच्छी तरह से कर रहा था, आपने क्यों मुझे श्राप दिया? ऐसा पूरा का पूरा अवसर महाराज इंद्रद्युम्न के पास था, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला नहीं। वो बोले, तत्ते अनुकंपाम सुषमिक्षमानम भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदवांग्वपुरभिर्विदधन नमस्ते जीवेत्यो मुक्ति पदे सदाय भाग। श्रील प्रभुपाद यह श्लोक ये गजेंद्र उपाख्यान में बारंबार कोट कर रहे हैं, बारंबार उद्धृत कर रहे हैं कि ऐसे भावना में अगर हम इन संकटों को, आलोचनाओं को या निंदाओं को स्वीकार कर देते हैं तो हमारा भगवत धाम जाना निश्चित है। इंद्रद्युम्न महाराज सोचते हैं कि यह भगवान की इच्छा है, यदृच्छया। अब यदृच्छया यह शब्द भागवत में बारंबार प्रकट होता है, परीक्षित महाराज के प्रसंग में, इंद्रद्युम्न महाराज के प्रसंग में कई बार आता है। यदृच्छया का मतलब है भगवान की इच्छा से। वो स्वीकार कर देते हैं कि यह भगवान की ही कृपा है मेरे ऊपर, ताकि मेरे पिछले जन्म के जो कर्म है दुष्कर्म नष्ट हो जाए और मैं ज्यादा शुद्ध हो जाऊं। और फिर वो आगे जाकर के हाथी बन जाते हैं। वो हाथी कहां के बनते हैं? केवल हाथी नहीं, हाथियों के राजा गजेंद्र, इंद्र मतलब राजा और गज मतलब हाथियों के राजा। दूध का जो सागर है, क्षीर सागर के बीचों बीच 10,000 योजन मतलब 80,000 मील का ऊंचाई का और चौड़ाई उतनी एक पर्वत है जिसके तीन प्रमुख चोटियां हैं, सोना चांदी और लोहे से बनी हुई, इसीलिए इसको बोलते त्रिकुट पर्वत। इस त्रिकुट पर्वत के जंगल में राजा इंद्रद्युम्न हाथी बनकर के रहने लगे, विचरण करने लगे। वो इतने शक्तिशाली थे कि बाकी हाथी भी उनके सामने नहीं आते थे, छोटे मोटे जानवर तो उनके इर्द गिर्द भी नहीं आते थे। जब वो दहाड़ते थे या चिल्लाते थे, शेर और जो सिंह है वो भी डर के मारे भाग जाते थे। तो ऐसे शक्तिशाली गजेंद्र एक बार छुट्टियां मनाने के लिए, अभी आ गए ना मई महीने की, रविवार के दिन जैसे सब लोग परिवार को लेकर के चौपाटी के दरिया के इर्द गिर्द घूमते हैं और ज्यादा पाप कर देते, बहुत कम लोग मंदिर में आते, तो वैसे गजेंद्र अपनी पत्नी बच्चे सब लेकर के छुट्टियां मनाने के लिए उसी जो त्रिकुट पर्वत का जो जंगल था उसमें एक ऋतुमत नाम का बगीचा था। वो बगीचे के अंदर विचरण करने लगा और बगीचे के अंदर एक बहुत बड़ा तालाब था, सरोवर था, उसके अंदर जाकर के वो जल क्रीड़ा करने लगा। और बहुत देर पानी में खेलने के बाद उसने अपने सूंड में पानी लेकर के अपने बच्चों के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर छिड़काने लगा। उसको अच्छा लगने लगा, परिवार वालों को अच्छा लगने लगा, लेकिन पानी में रहने वाले जो जलचर प्राणी थे वो सब विचलित हो गए। वो इतने विचलित हो गए कि उनके एक नेता थे मगरमच्छ, घड़ियाल, बराबर, तो उन्होंने बहुत शक्तिशाली थे, वो राजा थे उनके भी, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और उनका एक पैर को जोर से पकड़ लिया। प्रारंभ में ये गजेंद्र को लगा कि मैं छूट जाऊंगा, लेकिन दिन ब दिन प्रतिदिन वह युद्ध चलता गया, संघर्ष जारी रहा। और सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं, गजेंद्र भूमि का प्राणी है, जमीन का रहने वाला प्राणी है, और मगरमच्छ जो है वो पानी में रहने वाला प्राणी है। इसीलिए गजेंद्र जो है वो विदेशी वातावरण में युद्ध कर रहा था। तो प्रभुपाल जी उस तात्पर्य बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं कि इसीलिए गजेंद्र धीरे धीरे कमजोर होने लगा, और मगरमच्छ अपने ही देश में लड़ रहा था, उसको खाना पीना दाना पानी सब अच्छी तरह से मिल रहा था, तो दिन ब दिन उसकी शक्ति बढ़ रही थी और इसकी शक्ति घट रही थी। तो प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखते हैं, तो उसी तरह से जो कोई भक्त भक्ति कर रहे हैं और उनको भक्ति में कुछ व्यवधान आ जाए, संकट आ जाए, तो उसको परिस्थिति बदलनी चाहिए, भक्ति नहीं बदलनी चाहिए, भक्ति तो जारी रखनी चाहिए, लेकिन ऐसे स्थिति में रहना चाहिए जहां पे भक्ति अच्छी तरीके से कर सके। अगर कोई वैराग्य भक्त है, उसको उधर कुछ उलझन आ रही है, व्यवधान आ रहा है, तो उसको सीधे तरीके से गृहस्थ बनकर के भक्ति करनी चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखते हैं। उसी तरह से जो कोई भी भक्त जिस भी आश्रम में है, उसको अगर कुछ संकट आ रहा है उस आश्रम में, तो उसको अच्छे सलाह से अपने लिए एक अच्छा स्थान चयन करके वहां पे भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद लिखते आखिरी वाक्य उस तात्पर्य का, किसी भी हालत में भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। तो गजेंद्र समझ गए कि मैं अभी मरने ही वाला हूं, इसके ताकत के पीछे मेरा कुछ चलने वाला नहीं है। तो गजेंद्र ने भगवान का स्मरण किया, बोले मेरे जो रिश्तेदार है वो मुझे कुछ बचाने वाले नहीं है। तो उन्होंने पिछले जन्म में उनकी जो भक्ति की गई थी वो उनको स्मरण हुई, और उन्होंने भगवान को बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की। श्री गजेंद्र उवाच, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय भी धीमहि। मैं उन आदि पुरुष आदि बीज भगवान को प्रणाम करता हूं जो सारे सृष्टि के रचयिता है। इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, अगला अध्याय वही है। तो उस प्रार्थना के फलवश देवी देवता तो उनको मदद करने के लिए आते नहीं है, उनको तो लगता है कि ये हमें क्यों नहीं बुला रहे, भगवान को क्यों बुला रहे, ऐसे देवी देवताओं को लगता है, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में। तो इसलिए देवी देवता उनको मदद करने के लिए आते नहीं, वो सारी प्रार्थनाएं भगवान की तरफ निर्देशित कर देते, भगवान को भेज देते सारे देवी देवताएं। तो उस समय भगवान गरुड़ के पीठ के ऊपर आरूढ़ होकर के गजेंद्र को बचाने के लिए आते, तब सारे देवी देवता भी आ जाते और मन के अंदर ही माफी मांगने लगते, भगवान हमने ऐसे ऐसे गलती से सोचा था, ये हमें क्यों नहीं मदद मांगते, असलियत में आपसे ही सब लोग मदद मांगनी चाहिए। तो इसीलिए सारे देवी देवता भी भगवान के साथ आ जाते हैं और भगवान गरुड़ के पीठ से नीचे उतरते हैं, गजेंद्र को हाथ अपने हाथ से उसको बाहर खींच लेते हैं, वो मगरमच्छ भी बाहर आता है और सुदर्शन चक्र से वो मगरमच्छ का जो सिर है वो काट देते हैं। तुरंत वो जो मगरमच्छ है गंधर्व का रूप धारण करता है और वो बोलने लगता है, पिछले जन्म में मैं गंधर्व था और मेरा नाम था हाहा हा हा, ये दो गंधर्व थे हाहा और हुहू, अजीब नाम है। तो जब देवल ऋषि पानी के अंदर कुछ ध्यान कर रहे थे या गायत्री कर रहे थे, तब ये हा गंधर्व अंदर से जाकर के उनका पैर खींच रहे थे। तो देवल ऋषि ने बताया कि मगरमच्छ की तरफ पैर खींचने की तेरी आदत है, तो मगरमच्छ बन। तो उस समय हाहा को समझ में आता है कि बहुत भयंकर श्राप मिला है, तो वो देवल ऋषि से वरदान की अभिलाषा करते हैं। तो बोलते कि भगवान श्री हरि नारायण जब आएंगे गजेंद्र का उद्धार करने के लिए, तो आपको इस घड़ियाल मगरमच्छ के शरीर से मुक्त कर देंगे। तो ऐसे सब कथन करने के बाद भगवान श्री विष्णु वहां पर वरदान देते हैं कि हे गजेंद्र, उसको तो स्वरूप मुक्ति मिलती है भगवान के जैसा ही रूप, जो कोई भी लीला स्मरण करेगा सुबह उठने के बाद अपने बिस्तर में, तो उसको भगवत धाम प्राप्त होगा, मेरे धाम की प्राप्ति होगी, दुस्वप्न से मुक्ति मिलेगी और साथ ही साथ इस भौतिक जगत से हमें मोक्ष मिलेगा, इसका वरदान देते हैं। उसके बाद भी सुखदेव गोस्वामी दो बार दोहराते हैं। तो इसीलिए हमें सुबह उठने के बाद इस लीला का श्रवण करने का, स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए तुरंत। तो इस लीला से हम कई सारी चीजें सीखते हैं। सारे श्रीमद् भागवतम में ऐसी लीलाओं का बारंबार वर्णन आता है, बारंबार वर्णन आता है, तो उसका हम संक्षिप्त में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। भागवत के तीन प्रमुख संदेश है, समसिद्धिर हरितोषणम, वैसे तो बहुत सारे हैं, कल्पवृक्ष है भागवत। तो पहला है समसिद्धिर हरितोषणम, कि हमारे जीवन के जो भी कार्यकलाप हो, जो भी गतिविधियां हो, उन सबका उद्देश्य होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करना। जो भी करे, जैसे राजा इंद्रद्युम्न ने राजपाट चलाया, महाराज इंद्रद्युम्न ने राजपाट चलाया भगवान श्री विष्णु के लिए, श्री हरि के लिए, और उसके बाद वो भक्ति कर रहे थे, लेकिन जब समस्या आई तो वो भी संकट उन्होंने भगवान की ही कृपा समझ करके स्वीकार किया। तो इसीलिए एक गजेंद्र मोक्ष लीला का यही मर्म है, जो भी हमारे जीवन में होता है वो भगवान की कृपा से ही हो रहा है, ऐसा समझ करके हम आगे चले, जीवन यापन करें, भक्ति भजन करें, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। समसिद्धिर हरितोषणम, कुछ भी हो जाए, भागवत तो ऐसे सारे उदाहरणों से भरा है। पहले समस्या तो व्यासदेव को ही आ जाती है, व्यासदेव का जो असमाधान था हृदय के अंदर का, उधर से चालू हो जाते, फिर नारद मुनि उनको उपदेश देते हैं, उसके बाद समस्या नारद मुनि के खुद के जीवन में दिखाई दी है, नारद बालक के जीवन में, उसके बाद समस्या एक जो कौरव पांडव के युद्ध के उपरांत उत्तरा देवी की समस्या बताई है, कुंती महारानी तो बोलते ऐसी समस्याएं आती रहे, विपदा संतुतः शाश्वत, एक के बाद एक सारा भागवत जो है ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है कि कैसे एक भक्त भक्ति कर रहा था और उसको संकट आए और कैसे उसने भगवान का धन्यवाद दिया। वो कभी नहीं बोले कि भगवान ने गलती की है, भगवान को समझ में नहीं आता कि कैसे संचलन करना चाहिए, भगवान को दिमाग नहीं है, समझता नहीं क्या, मैं इतना अच्छे भक्ति कर रहा हूं, सब छोड़ छाड़ करके आया, सब त्याग करके आया, ऐसा लगता है। राजा इंद्रद्युम्न ने कभी शिकायत नहीं की, महाराज परीक्षित ने भी शिकायत नहीं की, उल्टा वो तो कहते हैं कि पुनश्च भूयात् भगवते अनंते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु याम्याम उपयामि सृष्टि मैत्रेस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य। कि जो भी हो जाए मेरे जीवन में, हे ब्राह्मण हे द्विजगण, केवल मुझे तीन आशीर्वाद दो, कि मैं भगवान के चरणों में अनंत आसक्ति उत्पन्न करूं, उनका आश्रय जिन्होंने लिया है उनके चरणों में अनंत आसक्ति उत्पन्न करूं, और जो भी प्राणी मात्र इस दुनिया में है उनके प्रति मैं मैत्री भाव रखूं, मित्रता का संबंध रखूं। तो इसीलिए प्रह्लाद महाराज भी नरसिंह देव को शांत करने के समय जो प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं उसमें गजेंद्र का उदाहरण देते हैं, भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। हे भगवान, आप तो भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे कि गजेंद्र के भक्ति से आप प्रसन्न हो गए थे। तो यही भक्ति है, जब हम साधन भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो व्यवधान आएंगे, संकट आएंगे, रुकावटें आएंगे, तो उस समय किसी से शिकायत किए बिना, ये भगवान की कृपा है मेरे कर्मों को नष्ट करने के लिए, दुष्कर्मों को, और उसी अवस्था में भगवान को धन्यवाद देते हुए अगर हम भक्ति जारी रखते हैं तो उसको बोला है शुद्ध भक्ति। कई सारे उदाहरण है श्रीमद् भागवत में। तो इसीलिए हमें जो भी हमारे जीवन में होता है, जैसे एक आचार्य बोलते हैं कि लाइफ इज अ कंटिन्यूस शावर ऑफ मर्सी एट एवरी सेकेंड, जीवन जो है हर क्षण भगवान की कृपा का वर्षाव है, बरसात है, कृपा का ही वर्षाव है। लेकिन हम लोगों का दुर्देव इतना है, उस कृपा को हम श्राप समझ लेते हैं, संकट समझते हैं, रुकावट समझते हैं और दूसरों को गाली देने लगते हैं, उसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हो गया, वो टेंपल कमांडर ने ऐसा किया, अध्यक्ष महोदय ने ऐसा बोला, उन्होंने मेरा सेवा रोक दिया, मैं तो मैं ही रुकता नहीं था, मेरे को केवल एक 2 साल दे दो, मैं सिद्ध करके देता हूं मैं कौन हूं। दूसरों की तरफ उंगली देखा करके हम भगवान का जो आशीर्वाद है उसकी तरफ दुर्लक्ष कर देते हैं, वो आशीर्वाद को हम लात मार देते हैं। तो जो भी हो रहा है अपने बुरे कर्मों से हमारे जीवन में संकट आते हैं, जैसा कि एक आचार्य बोल रहे थे कि डिफिकल्टीज कम इन द लाइफ ऑफ अ साधका एंड इन द लाइफ ऑफ अ प्योर डिवोटी। संकट है साधक के जीवन में भी आते हैं और शुद्ध भक्तों के जीवन में भी आते हैं। इन द लाइफ ऑफ अ प्योर डिवोटी टू ग्लोरीफाई देम एंड इन द लाइफ ऑफ अ साधका टू प्यूरिफाई देम। शुद्ध भक्तों के जीवन में आते हैं उनका गुणगान करने के लिए, जैसे प्रभुपाद जी, अभी प्रभुपाद जी ने क्या पाप किया है जीवन में, फिर भी 40 साल भारत में संघर्ष करते रहे, एक भी शिष्य नहीं बना। ऐसी बड़ी छड़ी उम्र में बुढ़ापे में वो अमेरिका चले गए, हवाई जहाज से नहीं, एक मालवाहू जहाज से। क्या पाप किया उन्होंने, क्या गलती की, यार खुद के लिए नहीं कर रहे थे वो, भगवान के लिए तो कर रहे थे, फिर भी उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की कि इसके कारण ऐसा हो गया, उसके कारण ऐसा हो गया। सब समझ रहे थे कि वो सब समय ऐसे समझ रहे थे कि भगवान की दया है, भगवान की कृपा है। मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिल तुआ पदे नंद किशोर। तो ऐसा जब हम सोचेंगे सम सिद्धिर हरि तोषणम, जो भी हो रहा है भगवान हरि के कृपा से, दया से हो रहा है, और ऐसे भाव से अगर हम प्रतिक्रिया देंगे तो भगवान हरि और भी प्रसन्न हो जाते हैं, राधा राज बिहारी और भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसका परिणाम ऐसा होता है, अंते नारायण स्मृति, अंत समय में, ये दूसरा वरदान है भागवत का, अंत समय में भगवान नारायण का स्मरण हो जाता है। भजन करे साधन करे मरते जानबे, कितना भजन किया है, कितना भक्ति किया है, कितना भोजन भी किया है, ये सब का जो परिणाम है मृत्यु के समय में याद आएगा हमें। अगर उस समय भगवान का स्मरण आ जाए तो हम सफल है जीवन में, विस्मरण हो जाए तो उसके जैसा दुर्देव और कुछ नहीं है। तो एक बार दक्षिण भारत के आचार्य रामानुजाचार्य के शिष्य कुरेश ने रामानुजाचार्य को पूछा, अगर समझो मैं जिंदगी भर भजन करूं, भक्ति करूं, सेवा करूं भगवान की, और मृत्यु के समय याद नहीं आए तो, अंतकाले च मामेव यम यम वापि स्मरण भावम, जैसा स्मरण मृत्यु के समय होगा वैसा पुनर्जन्म होगा। अगर मुझे नारायण का स्मरण नहीं हुआ तो क्या करूंगा गुरुदेव, मुझे बताइए क्या होगा। तो रामानुजाचार्य बोले, मुझे क्यों पूछ रहे, जाके रंगनाथ जी को पूछो। तो उस समय रंगनाथ जी कुरेश जी से बात करते थे, तो बोले क्या प्रश्न है, बोले मैं जिंदगी भर भजन करूंगा और मृत्यु के समय आप याद नहीं आए तो। रंगनाथ जी बोले, चिंता मत करो, मैं मृत्यु के समय तेरा स्मरण करूंगा, अगर आप जीवन भर मेरा स्मरण करोगे तो। तो जीवन भर स्मरण सब समय भगवान का धन्यवाद देते हुए कृतज्ञता से ही हो सकता है, कृतघ्न होके कभी नहीं हो सकता, नहीं तो हमारे जीवन श्रम एव ही केवलम। अगर मृत्यु के समय भगवान का स्मरण नहीं हुआ, भगवान के भक्ति में अनुरक्ति उत्पन्न नहीं हुई, तो धर्म स्वानुष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन कथा सूय न उत्पादयत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। ये मायने नहीं रखता कि कितने हमने सेवाएं के, क्या क्या हमने परिणाम दिखाए, क्या क्या हमने किया, उसका थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन पुनर्जन्म तो आपका हमारा निश्चित है। तो क्यों हम वापस अवसर ले ले, क्यों हम वापस धोखा पत करें। तो इसीलिए हमें हर क्षण भगवान के लिए स्मरण करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनको हर स्थिति में धन्यवाद देना चाहिए। तत्यानुकंपाम, यह श्लोक प्रभुपाद जी इस प्रसंग में गजेंद्र मोक्ष के बारंबार उद्धृत करते हैं। लेकिन यह भावना अपने आप एकाएक से नहीं आती। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में वर्णन आता है, शृण्वता श्रद्धया नित्यम गुणतश्च स्वचेष्टितम कालेन अतिधीर्घेन भगवान विशते रुधि। इसका इंग्लिश में मतलब ऐसा है कि आवर स्पेशल कॉन्शियस एफर्ट्स, हमारे विशेष जानबूझकर किए हुए प्रयास, ऐसा नहीं कि हम हाँ ठीक है हमने किसी ने जोर जबरदस्ती की इसलिए मंगलार्थी आ गए, अध्यक्ष महोदय पूछेंगे या ये अथॉरिटी पूछेंगे, किसी ने जोर जबरदस्ती की तो हम संध्या आरती में आ गए, किसी ने बोला इसलिए प्रचार कर रहा हूं, किसी ने बोला इसलिए पुस्तक वितरण कर रहा हूं, नहीं, हमारे खुद के उन्नति के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर हम विशेष जानबूझकर प्रयास करेंगे तो ये भावना आ सकती है। स्वचेष्टितम, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं स्वयं के प्रयास से। कई बार भक्तजन आते हैं सन्यासियों के पास, गुरुओं के पास, महान महान भक्तों के पास, महाराज आशीर्वाद दीजिए, महाराज कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, दया कीजिए, वो बोलते हैं सर। और महाराज पूछेंगे आप क्या करेंगे, नहीं मैं सुबह 8 बजे उठूंगा ना, 7 बजे उठूंगा, 6 बजे उठूंगा, आप क्या, मैं उस भक्तों की गलती निकालूंगा, इस भक्त की गलती रखूंगा, उसके बारे में शिकायत करूंगा, ये मैं करूंगा और आप मुझे आशीर्वाद देते जाइए। तो इसीलिए स्वचेष्टितम, हमें खुद से प्रयास करना पड़ेगा। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अनुशीलनम का यह जो परिभाषा सूत्र है श्रीमद् भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक में, अनुशीलनम का अर्थ है स्वयं से हमें प्रयास करना चाहिए। यही तो मर्म है प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं का उनके विद्यार्थी गणों के साथ का। वो बोलते हैं कि दुख और सुख ऐसे आने वाले हैं अयत्नवत, लेकिन प्रयास जो है वो केवल भक्ति के लिए किया जाता है, विशेष जानबूझकर किया हुए प्रयास। और वो जो प्रयास है जो भक्ति के बारे में करना चाहिए, और वो है भक्ति के 5 अंगों के बारे में, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास श्रीमूर्तिर श्रद्धया सेवन। अगर इन 5 चीजों में हमारी अनुरक्ति अनुराग बढ़ रहा है तो हम भक्ति में बढ़ रहे हैं। हरिनाम जप में अगर हमारी आसक्ति बढ़ रही है तो हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लाल कपड़ा पहने, पीला कपड़ा पहने, सफेद पहने या काला पहने, कौन सा कपड़ा पहने वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इन 5 चीजों में कितनी आसक्ति हमारी हो रही है या अनासक्ति हो रही है, ये हमारा भक्ति का बैरोमीटर है, परिणाम क्या बोलते परिमाण है। तो इसीलिए हमें ये गजेंद्र मोक्ष लीला से यह सीखना चाहिए, जो भी जीवन में आता है वो भगवान की कृपा है, और ऐसी भावना में कोई शिकायत किए बिना भगवान से, किसी भक्त से, अपने बुरे कर्मों का फल समझ करके अगर हम भगवान का भजन तीव्रता से करते जाएंगे दिन ब दिन हर परिस्थिति में, गंगा मैया की तरह जैसे वो समंदर की तरफ बढ़ती रहती है, तो हमारा अंतकाल में भगवान का स्मरण निश्चित है, राधा राजधरी का स्मरण निश्चित है, और हमारा भगवत धाम निश्चित है, और ये दुख या दुस्वप्न है भौतिक जीवन का, ये सब निश्चित रूप से समाप्त हो सकता है। हरे कृष्ण। श्रम एव ही केवलम, यह 3रा उपदेश है। अगर हम ऐसा समझ करके भगवान को धन्यवाद नहीं देंगे या भगवान का भजन बारंबार नहीं करेंगे, मृत्यु के समय याद नहीं आएंगे, तो हमारा जीवन जो है श्रम एव ही केवलम। हरे कृष्ण। जय श्री श्री राधा राज बिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौरनिताय की, गजेंद्र मोक्ष लीला की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की, उपस्थित भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंदे।